विज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो वैषन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सौवसाऊणं, सिद्धे जिनिन्द चन्दे आयरियौ वच्छाय साहुगणे वन्दिय सम्मदंसन चरितलद्धिं परोहे मोह। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित जी ने लब्धिसार समय ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ की रचना की है, जो भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम जो लब्धिसार भूमिका पढ़ रहे थे, पृष्ठ संख्या 19, हिंदी अनुवाद का पृष्ठ संख्या 19। देखो, ये लब्धिसार की भूमिका में हमने जो अभी तक जो बंध के चार प्रकार, वही सत्ता के चार प्रकार, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुवाद, उसके बाद उदय के चार प्रकार, ये आदि बातें हमने देखी है, और अनुभाग में भी हमने वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि आदि की चर्चा की, जो विषय हमारा बहुत बार कर्णान योग में भी हो चुका है। आप नहीं थे दो दिन, परंतु ये पढ़कर आप समझ सकती हो कि अपना विषय बहुत बार यहाँ हुआ, वही विषय यहाँ पर। अभी हम आए हैं 19 पृष्ठ पर, तीसरी लाइन यहाँ से पढ़ेंगे। इसी तरह ने के पहले तो उत्कर्षण की बात बताई कि स्थिति के बढ़ने को उत्कर्षण कहेंगे, अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहेंगे। उन्होंने एक वाक्य में लिख दिया है, 18 पृष्ठ पर नीचे लिखते हैं वो, नीचे से पांचवी लाइन में, स्थिति अनुभाग का बढ़ना उसका नाम उत्कर्षण है। कल भी हमने बात की थी परसों के, स्थिति अनुभाग बढ़ना, यानी जो स्थिति बढ़ी तो अनुभाग बढ़ा, उसमें ऐसा मत समझना। स्थितियों का उत्कर्षण होकर परमाणु ऊपर के निषेकों में जाते हैं, तो ऊपर जाते इसलिए अनुभाग बढ़ता, ऐसा उसका अर्थ नहीं, क्योंकि प्रत्येक निषेक में उत्कृष्ट से जघन्य तक के अनुभाग वाले अलग अलग परमाणु पड़े और हर एक में वो स्पर्धक रचना आदि रचना होती है, तो अनुभाग का घटना का अर्थ वो निषेक छोड़कर अन्यत्र जाना, ऐसा उसका अर्थ नहीं। निषेक तो स्थिति को बताते हैं और अनुभाग को बताने वाले तो स्पर्धक वर्ग वर्गण आदि होते हैं, वो तो सर्वत्र पाए जाते हैं। अपनी अपनी जगह रखकर भी अनुभाग का घटना उसको कहेंगे अनुभाग का आकर्षण। स्थिति का घटना स्थिति का आकर्षण। यहाँ उत्कर्षण की बात पहले बताया उन्होंने, उत्कर्षण में हमेशा नए बंध की आवश्यकता होती है, उससे बढ़ना स्थिति का या अनुभाग का, तो नया अगर बंध अधिक अनुभाग वाला स्थिति वाला होता है तो उसके साथ पुराने का वो उत्कर्षण होता है, उसकी बढ़ती है, प्रोवाइडेड तो उसकी शक्ति स्थिति बाकी हो तब। जो मिथ्या तो कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक काल तक सत्ता में इसे बढ़ता रहे और उसे ऐसा नहीं होता। अरे की उत्कृष्ट स्थिति मालूम है हमें, ज्ञानावरण की कितनी है सुशीला भी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले और कौन से है नलिन में? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा और वेदनीय भी है। तो इस तरह से जिसकी जितनी शक्ति स्थिति है वहां तक उसका उत्कर्षण हो सकता है नए नए बनने वाले के साथ, वो उसको लांग नहीं सकता। इतने लंबे काल तक कोई परमाणु रहते ही नहीं एक्चुअली। ये तो अपने बात हुई थी, जयधवला में भी हुई थी कि तो पल्ले के असंख्यात भाग इतने तो निश्चित रूप से रहेंगे, परंतु ये इतने कोड़ा कोड़ी बंधे हुए कितने आकर्षण होते हैं उसमें, या जो कुछ यथायोग्य बातें होती है, तो हो सकता है इतने लंबे काल तक भी कुछ एक भी परमाणु बाकी रहे, ऐसा भी हो सकता है, अनेक भी रहे ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि इतने काल तक वो रहे। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे।
स्थिति बंद और अनुभाग बंद दोनों का कारण तो कषाय है, कषाय के बढ़ने पर दोनों में उत्कर्षण हो सकता है।
देखो आपका प्रश्न ऐसा है, स्थिति और अनुभाग का कारण क्या है तो कषाय, तो स्थिति का कारण है ने, स्थिति लंबी बनती है इसका अर्थ क्या है, तीव्र कषाय। अब मेरा प्रश्न है अनुभाग अधिक बनता है उसका कारण क्या है, मंद कषाय के तीव्र कषाय किसमें, शुभ प्रकृति में क्या अशुभ में, ख्याल में आई बात। स्थिति में तो वो शुभ हो या अशुभ हो, तीव्र कषाय है तो स्थिति लंबी। अनुभाग में अभी हमें सोचना चाहिए किसका अनुभाग की बात कर रहे हैं, प्रशस्त प्रकृतियों के क्या अप्रशस्त, जहां कषाय मंद वहां प्रशस्त कर्म में अनुभाग ज्यादा, यानी वो अधिक फल देंगे। जैसे हमने देखा ना उसके नाम क्या देखे थे, चार स्पर्धकों के नाम याद है, हाँ, गुड़ खांड शर्करा और अमृत, तो उसमें कषाय जितने मंद तो अधिक अनुभाग वाले वहां परमाणु बनेंगे, यानी अनुभाग अधिक बनेगा। तीव्र कषाय में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम बनेगा, अप्रशस्त जो वहां बनती है उसका अनुभाग अधिक बनेगा। तो अनुभाग में हमें हमेशा सोचना है कि किस प्रकृति की बात करें, स्थिति में वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, मंद कषाय में कम बनते हैं और तीव्र कषाय में अधिक बनते हैं। आयु की बात नहीं है, सात कर्मों की बात, आयु में तीन आयु की बात अलग है, क्योंकि तीन आयु शुभ भाव ये शुभ प्रकृतियां हैं, जहां कषाय मंद वहां आयु लंबी यानी स्थिति अधिक बनती है। बाकी हमेशा कहते हैं अन्य उपकर्मों में स्थिति कम बनती है, यहाँ क्या होता है स्थिति अधिक बनती है। ये तीन आयु की बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आई है, ये बात वहां पर भी लिखा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं तो इसी तरह जैसे हमने उत्कर्षण में देखा कि स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसे कहते हैं इसी तरह स्थिति अनुभाग के घटने का नाम अपकर्षण है, अपने कम हो जाना अपकर्षण। वहां बहुत काल में उदय आने योग्य जो ऊपर के निषेक, ऊपर के निषेक का अर्थ क्या है, वो बाद में उदय में आने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान जो उदय रूप है वो हम नीचे दिखाते हैं निषेक, एक समय पश्चात उदय आने वाला, दो नंबर तीन नंबर ऐसे क्रम से हम दिखाते हैं, तो सबसे अंत ऊपर ऊपर के जो निषेक है वो तो बहुत काल के बाद उदय में आने योग्य है। तो कहते जो बहुत काल में उदय आने योग्य जो ऊपर के निषेक, उनके परमाणु अल्पकाल में उदय आने योग्य नीचे के निषेकों में मिलते हैं, अपनी जगह छोड़कर नीचे आ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे अपकर्षण। ये तो स्थिति का घटना हुआ। इस प्रकार बहुत स्थिति का अल्प स्थिति होने का नाम स्थिति अपकर्षण है, वो विशिष्ट पर्टिकुलर परमाणु की बात है, उसका पूरा निषेक तो अपनी जगह पर पड़ा है, उस निषेक में से कुछ परमाणु नीचे आए। अब अनुभाग की बात करते हैं, बहुत अनुभाग युक्त जो ऊपर के स्पर्धक, अभी ऊपर के स्पर्धक का अर्थ क्या है, हाँ जिसका उदय नहीं और अधिक अनुभाग वाला, ऊपर का अर्थ क्या है अधिक अनुभाग वाला, हाँ भले वो उपदेव लेके ऊपर है फिर भी कहाँ वो अंतिम निषेक में कि कहाँ पे जहाँ कहीं भी हो, सभी निषेकों में से अधिक अनुभाग का घटना होकर वो कम अनुभाग वाले हो जाएंगे, उसमें से सभी के सभी नहीं मान लेते हैं उत्कृष्ट अनुभाग वाले लाख परमाणु है, तो उसमें से हजार परमाणु अपना अनुभाग घटाएंगे तो हम क्या कहेंगे अपकर्षण हुआ उनका, और यदि वो लाख वाला घटकर एकदम कम ही हो जाएगा तो हम कहेंगे अनुभाग का घात हो जाएगा, घात हो जाएगा वो कांडक घात में उसकी बात करेंगे। हमें अपकर्षण में पूरा निषेक की उन्हें पूरी स्थिति नहीं कम होती है, कुछ परमाणु नीचे के परमाणु आ मिलते हैं जल्दी उदय में आते हैं, वो स्थिति का आकर्षण, और यहाँ अनुभाग का घटना, उसको कहेंगे अनुभाग का अवकाश। इस प्रकार बहुत अनुभाग का अल्प अनुभाग होने का नाम अनुभाग अपकर्षण है। सत्ता में अधिक अनुभाग पड़ा है परंतु कुछ परमाणुओं का अनुभाग घटा तो हम कहेंगे अपकर्षण हुआ। वहां विवक्षित सर्व परमाणुओं के समूह को उत्कर्षण या अपकर्षण भागार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणुओं का ग्रहण करके यथा योग्य ऊपर या नीचे मिलाने पर उत्कर्षण या अपकर्षण होता है। अभी इसका अर्थ देखते हैं। हम कहते हैं ना थोड़े परमाणुओं का अपकर्षण होता है या उत्कर्षण होता है, तो थोड़े नहीं कितने, 2-4-5 लाख करोड़। तो कहते हैं जितने टोटल परमाणु है, हम एक निषेक की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर निषेक में से कितने परमाणु का अपकर्षण होगा। वैसे टोटल अपकर्षण द्रव्य कितना होता है समझने के लिए सत्ता का जो पूरा ही द्रव्य है उसको विशिष्ट संख्या से भाग देते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं, अपकर्षण उत्कर्षण भागार। वो भागार देने पर जो एक भाग का प्रमाण है उतने परमाणु अपकर्षित हो जाएंगे। हर एक निषेक में से थोड़े थोड़े आए, फिर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से होता है उसकी बात करेंगे बाद में, तो उसका अपकर्षण अपने अपने नीचे के निषेकों में जा मिलेंगे। नीचे अपने अपने नीचे एक आवली प्रमाण निषेक छोड़ देते हैं और उसके नीचे सर्वत्र उदय के समय से लेकर सर्वत्र दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, अपकर्षण कहेंगे। ये सत्ता में इतने निषेक पड़े हैं, अभी जो उदयावली में उसका अपकर्षण नहीं होता ना उत्कर्षण होता है। अब ये जो सारे परमाणु है इसमें, इसको अपकर्षण उत्कर्षण जो भागार है उस भागार से भाग देंगे तो अपना अपना जो प्रमाण है वो थोड़े परमाणु जो है वो यहाँ उसमें से निकलेंगे सब में से, और फिर नीचे, अभी नीचे कहाँ दिया जाएगा, तो सभी उदयावली में नहीं दिए जाते, तो ये अंतिम निषेक की बात करते हैं। उसके परमाणु कहाँ जाएंगे, उसके नीचे एक आवली छोड़ दो और नीचे सर्वत्र जाएंगे, हर निषेक में जाएंगे उदय के समय तक। सेकंड नंबर के उसके अपने नीचे एक आवली छोड़ दो, उसको लांग कर नीचे सर्वत्र दिया जाता है। तीसरे निषेक का उसके अपने नीचे छोड़ो, सर्वत्र दिए जाएंगे। कहाँ तक ऐसा रहना, उदयावली के ऊपर के निषेक के परमाणु अपकर्षण होकर कहाँ जाएंगे, उदयावली में नीचे वंथरण में जा मिलेंगे। ख्याल में आई ये बात, इसको क्या कहेंगे, अपकर्षण। अब ये तो स्थिति का घटना है। अब हरेक निषेक में एक निषेक है, कोई भी एक निषेक ले, ये तीव्र अनुभाग है और ये मंद अनुभाग है, इसको हम ऐसा दिखाते हैं ना, तीव्र अनुभाग और ये मंद अनुभाग। तो इसके अनुभाग के कुछ, यानी यहाँ के जितने तीव्र अनुभाग वाले जितने परमाणु है उसमें से कुछ परमाणु का अनुभाग घटना, वहां भी वो अपकर्षण भागार से भाग देंगे तो हम उसको कहेंगे अनुभाग का अपकर्षण। ये जरूरी नहीं कि वो ऊपर से नीचे आए ही इसलिए उसके अनुभाग मंद हुआ, ऐसा नहीं है। यदि नीचे आते आते उसका अनुभाग का भी अपकर्षण होता है उसी पर्टिकुलर परमाणु में तो हो सकता है, परंतु अनुभाग की रचना हम अलग ही दिखाते हैं। इन दो की कुछ घोटाले मत करना, अनुभाग की अपेक्षा बात करनी है तो यहाँ देखना, स्थिति की अपेक्षा बात करनी है तो निषेक की रचना की तरफ देखना। जैसे स्कूल में हम अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंगली नंबर लगाते वो अलग होता है, अल्फाबेटिकल अलग होता है, हाइट वाइज वो अलग होता है, वैसे यहाँ जब स्पर्धक की बात करेंगे अनुभाग की तो वो अलग रचना है। तो ऊपर के स्पर्धक यानी तीव्र अनुभाग, नीचे के स्पर्धक यानी मंद अनुभाग, क्योंकि ये ऊपर और नीचे हर निषेक में है, ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। इसको हम अगर ऊपर नीचे करना है ऐसा करो, ये तीव्र अनुभाग है और ये मंद अनुभाग है, हर एक में तीव्र अनुभाग हो गए, हर एक में मंद भी हो गए और हर एक में अनंत वेरिएशंस हो गए। तो इसलिए जो अनुभाग की बात अलग सोचो और स्थिति की बात अलग सोचो। ये हमारा कितने ही साल तक कंफ्यूजन नहीं मिटा था, क्योंकि हमने ऐसे सुन के रखा था कि ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले होते और नीचे के मंद, तो हम स्थिति में ऐसा समझते थे और ऐसा उदाहरण देके भी समझाते थे। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छी तरह से। वो उदाहरण ऐसा देते थे कि जैसे कप में हमने गिलास में कप में दूध लिया और शक्कर डाली और बराबर नहीं हिलाया तो वो तो नीचे नीचे अधिक शक्कर रह जाती है, यानी बाद में जो है वो मीठा ज्यादा लगता है। वैसे ऊपर के निषेकों में अनुभाग ज्यादा होता है, परंतु ऐसा है नहीं। कल मैंने एक वाक्य दिखा था आपको, जब हमने अनुभाग की रचना देखी थी, अनुभाग सत्व की बात की थी, चौदह में देखो, ऊपर की दूसरी लाइन में देखो, स्थिति संबंधी एक एक निषेक के परमाणुओं में ऐसा अनुभाग का विशेष पाया जाता है, यानी अनुभाग के जो वेरिएशंस है वो प्रत्येक निषेक में पाए जाते हैं। लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है आपने, आगे भी लिखते हैं, जिस तरह स्थिति के पहले निषेक पहले उदय में आते हैं और ऊपर के निषेक पश्चात उदय में आते हैं, उस तरह अनुभाग के पहले स्पर्धक पहले उदय में आने का और ऊपर के स्पर्धक पश्चात में उदय में आने का नियम नहीं है। यानी हर निषेक में हर टाइप के अनुभाग पाए जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर अपना पृष्ठ संख्या है 19। अभी हमने जो दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा, दूसरा तो हो गया, तीसरा पैराग्राफ, विवक्षित सर्व परमाणुओं के समूह को, यानी कितने परमाणु अपकर्षित उत्कर्षित होते हैं, तो हम कहेंगे जो परमाणु टोटल द्रव्य है उसको अपकर्षण उत्कर्षण भागहार, उस भागहार से भाग देने पर एक भाग का जो प्रमाण आएगा उतने परमाणुओं का अपकर्षण होगा या उत्कर्षण होगा। तो विवक्षित सर्व परमाणुओं के समूह को उत्कर्षण या अपकर्षण भागहार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणुओं का ग्रहण करके यथा योग्य ऊपर या नीचे मिलाने पर उत्कर्षण या अपकर्षण होता है। ख्याल में आई बात, वो असंख्यात में होता है, हमने उसका अल्प बहुत भी देखा था ना, पंचभागार चली ताकि उस प्रकरण में अभी अभी कर्मकांड में भी देखा था कितना बड़ा होता है। जैसे सर्व संक्रमण भागार एक है, उसके बाद वो उत्कर्षण अपकर्षण भागार का नंबर आया था। वो उत्कर्षण व अपकर्षण भागहार का प्रमाण आगे कहे जाने वाले गुण संक्रमण भागहार से तो असंख्यात गुना है। गुण संक्रमण भागहार छोटा है तो वो गुण संक्रमण होने वाले परमाणु ज्यादा है, ये भागहार उससे भी बड़ा है तो अपकर्षण होने वाले परमाणु गुण संक्रमण से कम है। देखो ये आपके प्रश्न का उत्तर ताबड़तोप आ गया है। उस उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का प्रमाण आगे कहे जाने वाले गुण संक्रमण भागहार से तो असंख्यात गुना है और अध प्रवृत्त संक्रमण भागहार के असंख्यात वे भाग ऐसे पल्ले के अर्धच्छेदों का असंख्यात वा भाग मात्र जाने। कितना है पल्ले के अर्धच्छेद का 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात, इस तरह उत्कर्षण और अपकर्षण का स्वरूप कहा। हमने अभी कर्मकांड के संदृष्टि में उसके बहुत अच्छी तरह से संदृष्टि भी देखी थी, क्योंकि हर जगह वो असंख्यात भाग कहा परंतु उसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग थी। यदि एक प्रकृति के परमाणु, ये उत्कर्षण और अपकर्षण की बात हो गई, अब संक्रमण की बात बताने जा रहे हैं। यदि एक प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप होते हैं तो उसका नाम संक्रमण है। यह प्रकृति संक्रमण से सामान्य से बात की है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं अभी हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ये तो सामान्य स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। देखो एक प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति तो ज्ञानावरण की दर्शनावरण रूप हो जाएगी कि नहीं, नहीं होगी, यहाँ तो लिखा है ना। हाँ हाँ मूल प्रकृति आपस में संक्रमण नहीं होता। एक ही मूल प्रकृति के जो उत्तर प्रकृतियां हैं जिसको हम कहेंगे सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है। दर्शन मुनि का चारित्र मुनि में होगा कि नहीं होगा? नहीं होता है। दर्शन मुनि का आपस में होगा, तीन का आपस में। ये एक प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप होते तो केवल ज्ञानावरण है वो मति ज्ञानावरण रूप होगा कि नहीं होगा? चक क्यों कह रहे
हैं?
बोलो अश्विन भाई क्या कहते हैं? केवल ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण रूप नहीं होगा, ये पांचों आपस में संक्रमण करते आपस में संक्रमित होते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सजा वो जो आपस में हो जाती है, हाँ सजाती है। जैसे हम देखें अनंत अनुबंधी और प्रत्यय प्रत्यय वो भी आपस में अभी उसके जो नियम है जो बंधने वाले में संक्रमित होता है वगैरह वगैरह, अभी ये तो पांचों ही बंध रही है, इनका आपस में तो थोड़े परमाणु इधर के उधर होते हैं, पूरा का पूरा नहीं स्टर्न हो जाता है। आपस में हमारे परमाणु का चेंज होना बनता रहता है। यहाँ क्या कहा देखो, यदि एक प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप होते हैं तो उसका नाम संक्रमण है। यह तो बहुत स्थूल बात यहाँ बता रहे हैं। जैसे संक्लेश पने से पहले असाता वेदनीय बांधी थी, पश्चात विशुद्धता के बल से उसके परमाणु साता वेदनीय रूप होकर परिणमते, वो सजातीय प्रकृति है, साता असाता असाता साता वो आपस में चेंज होते रहते। ऐसे यथा योग्य अन्य अन्य प्रकृतियों का भी संक्रमण जानना। अभी ये संक्रमण के ऊपर ही कितनी सारी पुस्तकें होने पड़ती हैं।
यहाँ ऐसा डाल सकते हैं, एक उत्तर प्रकृति के परमाणु अन्य उत्तर प्रकृति होते हैं?
नहीं, मनुष्य मनुष्यायु देवायु में नहीं होगा, बहुत सारे नियम है। हम अपनी ओर से कोई नियम बता नहीं जाते, अच्छे लोग को मालूम इसलिए हंस रहे हैं। कहाँ लिखा है संक्रमण जानना? अभी सजा
के जैसा अन्य का भी जानना,
हाँ, परंतु यथायुग इसलिए कहा कि जैसे आयु कर्म है और उसकी चार उत्तर प्रकृतियां हैं, उसका तो आपस में संक्रमण नहीं होगा। अब वो संक्रमण के लिए भी कौन से प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, कौन से गुणस्थान में कहाँ होगा संक्रमण, बंधने वाले में संक्रमण होगा, ये बहुत सारे उसके नियम हैं। इसलिए अपनी ओर से कोई नियम बनाने की कोशिश मत करना जो उन्होंने नहीं किया, और सरल करके करने के लोभ में पंडित टोडरमल जी ने नहीं लिखा। वहाँ संक्रमण होने में पांच प्रकार के भागार पाए जाते हैं, यानी यहाँ जो पांच प्रकार का संक्रमण बताया तो उस भागार के नाम से उस संक्रमण को भी बताते हैं, क्योंकि कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसका जो प्रपोर्शन है या उसका जो कुछ प्रमाण है वो उस भागार से भाग देने पर जितनी संख्या आएगी उतने का संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण को उसी के नाम से हम पहचानेंगे। देखो पहला है उद्वेलन संक्रमण, यानी वो संक्रमण भागार का ही नाम है उद्वेलन भागार। विद्यात अध प्रवृत्त गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, इनका कथन गोमर सार के कर्मकांड में पंच भागार चिलिका है वहां जानना, अथवा यहाँ यथावसर कहेंगे जब उसका विषय आएगा तो वहां उसकी बात फिर दोबारा होगी। ये तो अभी अभी हमारे कर्मकांड अर्थ संदृष्टि में भी हमने दोबारा इसको देखा था। हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं?
जो उद्वेलन दिखा है उसी का उत्कर्ष
नहीं? नहीं नहीं, उद्वेलन तो हम देखो ये उद्वेलन किसको कहते हैं? कितनी कुछ प्रकृतियां खास प्रकृतियां हैं तो उसके उद्वेलना से यानी वो बंधी हुई प्रकृतियां नष्ट हो जाती है, अन्य में संक्रमित होकर नष्ट हो जाती। आपको कोई ऐसी प्रकृति मालूम है जो उद्वेलना होती जिनकी? मंदा भी
नहीं,
कोई भी बताओ ना, इसी 13 है उसमें आपको जो मालूम है वो बता। हाँ, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, उद्वेलना होकर क्या हो जाता है, किसमें टर्न होती है, मिथ्यात्व प्रकृति। जब सम्यक दर्शन हुआ था तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनी थी। अब वो जीव मिथ्यात्व में गिर गया, सम्यक दृष्टि था ना वो भी मिथ्यात्व में आया। तीन प्रकृतियों की सत्ता तो है, अन्य दो प्रकृतियों का उदय तो नहीं है, मिथ्यात्व का उदय है और नया बंध भी मिथ्यात्व का चल रहा है। तो अन्य दो का क्या होता है, तो कहते वो तो मिथ्यात्व रूप से संक्रमित होते रहते हैं। एक अंतर्मूर्त के लिए उसको अधप्रवृत्त संक्रमण कहेंगे और बाद में उसको उद्वेलना संक्रमण, क्योंकि उसका प्रमाण अलग है ना, तो उसका नाम उसको उद्वेलना संक्रमण। तो पल्ले के असंख्यात भाग इतने काल में वो पूरी नष्ट हो जाती है, ये दो प्रकृति सारी की सारी मिथ्यात्व रूप से टर्न हो जाती है, इसको कहेंगे उद्वेलना। अश्विन भाई और कौन सी प्रकृतियां मालूम, हाँ आपको मालूम, मनुष्य गति, अग्नि का एक, वायु का एक, उसके करते हैं। देखो क्रम से बताएंगे, देखो हाँ, आहारक आहारक अंगोपांग पहले, उसके बाद ये समय मिथ्या, समय प्रकृति समय मिथ्या, तो मनुष्य गति मनुष्य गति अनुपूरी, देवगति देवगति, एक्चुअली मनुष्य गति को बाद में लेना है, पहले देवगति देवगत्यानुपूरी, नरक गति नरक गत्यानुपूरी, उसी के साथ वैकिरेक शरीर अंगोपांग, हाँ उसको वैकिरेक शटक कहेंगे। हाँ अभी मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी और उच्च गति, ये 13 प्रकृतियां हैं, इनकी उद्वेलना होती है। अब कहाँ होती है कौन करता है वो सभी बातें हमने विस्तार से देखी थी। तो ये है भी संक्रमण से वो नष्ट होती उसको कहेंगे उद्वेलना होती, उसके लिए जो भागार है उसको कहेंगे उद्वेलन भागार। फिर विद्यात संक्रमण जो है अभी वो कहाँ क्या होता है इसे विद्यात भागार से, जो विद्यात संक्रमण जैसे समय दर्शन होने के बाद वहां जो पहले में पहले गुण संक्रमण होता था मिथ्यात्व में से अन्य दो प्रकृति तैयार हुई, बाद में क्या होगा वो तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तो विद्या संक्रमण चालू रहता है उसका। कौन कौन सी प्रकृतियों में कौन कौन से संक्रमण होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी बात हमने भी देखी थी और विस्तार से पढ़ना है तो कौन से भाग है, तबला में भी आया था और ये कर्मकांड में तो पढ़ा था हमने। अध प्रवृत्त संक्रमण ये तो हमने देखा था सभी कर्मों में होता है एक्सेप्ट मिथ्या तो प्रकृति। गुण संक्रमण जहाँ विशुद्धि होती है तो विशिष्ट कर्मों का अन्य जो गुणित प्रमाण में संक्रमण होता है उसको गुण संक्रमण कहेंगे। सर्व संक्रमण यानी जब थोड़े परमाणु बाकी है और वो सारे के सारे टर्न हो जाते हैं उसको कहेंगे सर्व संक्रमण। इनका कथन गोमठ सार के कर्म कांड में पंच भागार चूलिका है वहां जानना, अथवा यहाँ यथावसर कहेंगे कुछ स्वरूप अभी कहते हैं। ट्रोनमल जी हमेशा ही कहते हैं आगे कहेंगे फिर भी अभी थोड़ा सा कहते हैं। उद्वेलन प्रकृतियों के परमाणुओं को, जिसको उद्वेलन प्रकृतियां जो अभी हमने 13 प्रकृतियां गिनाई है उनको कहेंगे उद्वेलन प्रकृतियां, उनके परमाणुओं को उद्वेलन भागार का भाग देकर, सत्ता में जितनी प्रकृतियों के परमाणु जो है उसको उद्वेलन भागार नामक संख्या से भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं वहाँ उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। ये एक एक समय में इतने इतने परमाणु संक्रमित होते हैं। जहाँ मंद विशुद्धता युक्त जीव के जिसका बंधन नहीं पाया जाता ऐसी विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं को विद्यात भागार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं वहां विद्यात संक्रमण कहते हैं। देखो समय दर्शन हो गया अभी चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान है, कितनी प्रकृतियां वहां नहीं बनती ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में, तो उसमें नहीं बनने वाले प्रकृति है ना उनका जिनका बंधन नहीं पाया जाता ऐसी विवक्षित प्रकृतियों के परमाणुओं को अन्य प्रकृति रूप वहां परिणमना चालू हो जाता है। जैसे चौथा गुणस्थान है अनंतानुबंधी का क्या होता है, और प्रत्ययन रूप एक थोड़े थोड़े करके उदय में आते हैं, और उसका वो उसमें संक्रमण भी होता है क्योंकि उसका बंध है, उसमें संक्रमित होते रहते, पूरा का पूरा टर्न नहीं होता, उसको तो विषय योजना कहेंगे, ये थोड़े थोड़े परमाणु संक्रमित होते रहते हैं तो उसको विद्या संक्रमण कहेंगे। जहां जिसका बंध पाया जाता है ऐसी विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं को अध प्रवृत्त भागार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं, वहां अध प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। अभी जिनका बंध पाया जाता, मान लेते अभी मुनि राज है, ज्ञानावरण का बंध चल रहा है, कब तक चलता है? दसवें तक चलता है। तो अभी उनका बंध चल रहा है तो उनका संक्रमण जो होता रहता है तो वहां उनको अध प्रवृत्त संक्रमण कहेंगे, उन प्रकृतियों का जो संक्रमण है उसको अध प्रवृत्त संक्रमण कहेंगे। जहां विवक्षित अशुभ प्रकृति के परमाणुओं को गुण संक्रमण भागार का भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं, वहां पहले समय में जितने परमाणु परिणमते हैं उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणा परिणमते, गुण संक्रमण गुणित प्रमाण है, प्रति समय जो परमाणु संक्रमित हो गए वो गुणित 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 असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, उससे तीसरे समय में असंख्यात गुना, इस प्रकार प्रति समय गुणकार पाया जाता है वहां गुण संक्रमण कहते हैं। यानी यहां विशुद्धि बढ़ रही है, अशुभ प्रकृति के परमाणुओं को शुभ प्रकृति रूप परिणाम आ रहे हैं। जहां विवक्षित प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप प्रति समय परिणमते हुए अंत समय में अंत फाले रूप ही अवशेष सर्व ही परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमते हैं, वहां सर्व संक्रमण कहते हैं। जैसे हम देखते ना, अभी हमने उद्वेलना देखी थी, समय मिथ्यात्व समय प्रकृति मिथ्यात्व रूप परिणमित होती रही होती रही, अब अंतिम एक ही थोड़ा जो कुछ वहां बाकी रहा वो सारे के सारे परिणमित हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे? सर्वसंग। ऐसे ऊपर भी जो गुणस्थान में जो होता है क्षय होता है तो क्या होता है, ये पूरा क्षय का प्रोसेस संक्रमण से होता है। पहले वेद के परमाणु सारे क्रोध रूप होते हैं, क्रोध के परमाणु मान रूप होते हैं, मान के माया रूप होते हैं, माया के लोभ रूप होते हैं, लोभ के अपने रूप से उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं, तो ये संक्रमण ही तो है वहां पर, ख्याल में यही बात। तो वो जहां अंतिम लौट है वो दूसरे रूप हो जाता है तो उसको कहेंगे सर्व संक्रमण। अब इन भागहारों का प्रमाण कहते हैं, ये अभी अभी हम अर्थ संदृष्टि में भी पढ़कर आए हैं। तो सर्व संक्रमण भागहार का प्रमाण तो एक है, भागहार का प्रमाण एक है, मान लेते वहां लाख परमाणु बाकी है तो कितने परमाणु संक्रमित हो गए सर्व संक्रमण में? पूरे के पूरे। कौन सी संख्या से भाग देंगे तो पूरे परमाणु आएंगे? एक से भाग देंगे, तो इसलिए उसको भागहार का प्रमाण ही एक है। सर्व संक्रमण भागहार का प्रमाण तो एक है क्योंकि अवशेष रहे परमाणुओं को एक का भाग देने पर सर्व परमाणु मात्र प्रमाण आता है, उससे असंख्यात गुणा ऐसा पल्ले के अर्धच्छेद के प्रमाण के असंख्यात वे भाग मात्र गुण संक्रमण भागहार का प्रमाण है। ये दो नंबर पर, उससे असंख्यात गुणा जो उत्कर्षण व अपकर्षण भागहार है उससे भी असंख्यात गुणा, चार नंबर पर, ऐसा पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात वे भाग मात्र अधप्रवृत्त संक्रमण भागहार का प्रमाण है। ऊपर भी ऐसा ही कहा था गुण संक्रमण के लिए, फिर भी उससे यह असंख्यात असंख्यात गुणा है, यह अधप्रवृत्त संक्रमण भागहार का प्रमाण है। अभी पांच नंबर, उससे असंख्यात गुणी ऐसी संख्यात पल्य मात्र कर्म की स्थिति है। इसमें सभी अल्प बहुत नहीं लिए है, हमने वो बीच में पल्ले को भी देखा था, अन्य अन्य भी संख्या और भी देखी थी। उससे भी असंख्यात गुणा ऐसा सुचंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र विध्यात संक्रमण भागार का प्रमाण है। देखो यानी इतना वो कितना, पहले तो पल्ले के असंख्यात वे भाग में थे, अब सुचंगुल के असंख्यात वे, यानी बहुत बड़ा भागार है, तो बहुत कम परमाणु संक्रमित हो गए। उससे असंख्यात गुणा ऐसा, सात नंबर, सुचंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र उद्वेलन संक्रमण भागार का प्रमाण है। दोनों का कथन क्या है, सुचंगुल का असंख्यात है, फिर भी विद्या संक्रमण भागार से उद्वेलन संक्रमण भागार असंख्यात गुणा है, इस तरह संक्रमण का स्वरूप कहा। यहाँ प्रकृति संक्रमण की बात की, वैसे अनुभाग का पलटना, स्थिति का पलटना, उसको भी संक्रमण में लिया है कहीं कहीं, अब उसकी तो यहाँ विवक्षा नहीं है। हम यहाँ कर्म के 10 करण देख रहे हैं, कौन कौन से देख लिए अब तक नलिन भाई, वीरेश भाई, कौन कौन से करण, कौन से 10 करण, कौन से कर्म की अवस्थाएं 10, बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण, यहाँ तक अभी हमने देखे, 7 देखे, अभी 3 देखेंगे। अच्छा बाकी कौन से पूछो, उपशम निदत्य, आप नितिन भाई, आप नलिन भाई कह रहे हो, नितिन भाई की तरफ देख रहे हैं, बच गए बच गए। अभी आगे पढ़ेंगे, देखो 20 पेज पर नीचे से चौथी लाइन, पुनः विवक्षित प्रकृति के उदयावली के बाह्य निषेकों के परमाणु जो उदयावली में प्राप्त करने योग्य न हो, क्या कहा, ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में नहीं एंटर करता, वो ऊपर जो कुछ उत्कर्षण उत्कर्षण हो रहा है वो ऊपर का ऊपर हो रहा है, वो नीचे नहीं आ रहे, ऐसे कुछ परमाणु होंगे, कुछ नीचे आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उपशांत द्रव्य कहते हैं। अभी तक उदयावली में, वो बाद में नहीं आएगा, वो बात नहीं है, अभी तक वो जो बंधा हुआ है वो उदयावली में नहीं आया है, तो उसको क्या कहेंगे, वो उपशांत है, वो मोह का उपशम होता है, वो बात नहीं है, ये उपशांत वाला जो है वो तो सभी कर्मों में होता है, जब तक उदय में नहीं आते तब तक सभी क्या है, उसको उपशांत करण कहेंगे, यानी उदयावली में देने योग्य नहीं होते कुछ परमाणु। देखो उदयावली के बाह्य निषेकों के परमाणु जो उदयावली में प्राप्त करने योग्य न हो, ये उन परमाणु की योग्यता ऐसी है कि वो उदयावली में आकर उदय नहीं हो सकता, भले वो ऊपर के ऊपर उसका अपकर्षण होता जाए, फिर उत्कर्षण होता जो यथायोग्य होगा, तो उपशांत द्रव्य कहते हैं। यहाँ उपशम विधान से, ये उपशम विधान जो होता है प्रथम उपशम द्वितीय उपशम आदि में, वो बात अलग है, तो उपशम विधान से मोह का उपशम करते हैं, उसका ग्रहण नहीं करना, यानी ये जो करण बताया है उपशम नाम का करण, तो उसमें वो करण, वो उपशम की बात नहीं है, क्योंकि उपशम भाव मोह ही का है और उपशांत करण सर्व प्रकृतियों के पाया जाता है। आयु में होगा कि नहीं होगा, कि जो उदय में आ रहे हैं उसका तो उदय उदीरा जो है, परंतु ऐसे कितने परमाणु है जो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, क्यों होगे कि नहीं गा? नहीं तो मरण तक तो कोई परमाणु ही नहीं बचेंगे, सब खिर जाएगी ना उदय का। उपशांत आदि 3 करण, कौन से 3, उपशांत निधत्य और निकाचित, 8वें गुणस्थान तक ही कहे हैं, यानी यहाँ जब जीव इतनी विशुद्धि होती है तो अभी कोई ऐसी परमाणु में जो वो उपशमित रहने की योग्यता थी उपशांत करण वाली, कि वो उदयावली में नहीं दे सकते थे, अभी वो छूट गया सबका, यानी अभी उनका आकर्षण होकर उदयावली में आकर फिर भी जा सकते हैं, ये बात नक्की होती है। अभी तक वो नहीं हो रहे थे। तो उपशांत आदि तीन करण आठवें गुणस्थान तक ही कहे हैं और उपशम भाव ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था मोहिनी का जो उपशम है वो वहां तक है ग्यारहवें गुणस्थान तक। अब निधत्ति की बात करते हैं। विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु संक्रमण होने और उदयावली में प्राप्त होने के योग्य न हो वह निधत्तीकरण द्रव्य है। अभी तो हमने उदयावली में प्राप्त नहीं होते तो हमने कहा उसको उपशांत है। अब कहते अन्य प्रकृति रूप भी नहीं होते और ना ही उदयावली में आते हैं, उसको क्या कहेंगे निधत्ति। तो क्या होता है अपने प्रकृति रूप रहते हैं, उसका आकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता? उदयावली में नहीं जाएंगे, आकर्षण नहीं होता, कहाँ लिखा है उदयावली में नहीं जुड़ेंगे? वो निकाचित में भी और भी कंडीशन डालेंगे। विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु संक्रमण होने उदयावली में प्राप्त होने और उत्कर्षण अपकर्षण होने योग्य न हो, पहले वाले उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता था उनका, उदयावली में नहीं जाते तो उपशांत कहते थे। अन्य प्रकृति रूप होकर भी वो टर्न हो सकते थे तो वो भी नहीं, तो उसको हमने निधत्ति कहा। अब कहते वो अपनी जगह अपना निषेक छोड़ेंगे नहीं तो अपकर्षण उत्कर्षण उसमें नहीं होगा, कुछ परमाणु अपनी जगह रहेंगे ना, उसमें क्या है? पूरे कर्म को निधत्ति निकाचित नहीं कहते, ये तो ऐसे हम सुनते आए अभी तक प्रवचनों में भी। क्या सुना आपने?
कैसे निकाचित कर्म बांधे
तो ऐसा कौन सा कर्म है जिसको भोगना पड़ेगा बोलो? आयु कर्म को भोगना पड़ता है, वो तो कैसे खुशी खुशी भोगता है वो वाला उपशम जिसको हम अप्रशस्त उपशम भी कहेंगे, पर वो भी अलग है। अप्रशस्त उपशम में भी उदयावली में तो आया है, परंतु उदय में आते आते टर्न होकर उदय में आते हैं। ये कुछ परमाणु ऐसे कि उदयावली में एंटर नहीं होगा, अपकर्षण होगा वहाँ फिर भी उत्कर्षण होगा, तो ऊपर वही के वही घूमते रहेंगे, उदयावली में एंटर नहीं करेंगे।
हमने जो चार बातें देखी
निकाचन
ये
वाला उपशम, यानी निधत्ति वाला क्या है उसमें वो उपशांत तो है ही है, संक्रमण का भी अभाव। आगे निकाचित में वो उपशांत बहुत तो है, चल ही रहा है उपशांत करण तो चल ही रहा है, संक्रमण भी नहीं हो रहा है, अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं हो रहा है। यानी जो ऐसे कुछ कर्म है जैसे हमने देखा ना, इसमें से अपकर्षण होता है, अपकर्षित हुए हो या जो अन्य भी परमाणु नया बंध होता है तो उसके साथ उसका उत्कर्षण भी होता रहता है, तो ये तो चलता रहता है उनका। परंतु कुछ परमाणु ऐसे हैं ना तो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, ना उनके अपकर्षण होगा ना उत्कर्षण होगा ना पर प्रकृति रूप होगा, अनंत पड़े उसमें कुछ तो ऐसे रहेंगे कि नहीं अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? जो अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है परंतु उदयावली में नहीं आ सकते तो हम कहेंगे उपशांत। जो उपशांत है और संक्रमित भी नहीं होते तो उनको कहीं निधत्ति। अब जो वैसे तो है ही है परंतु उनमें अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं होता, अपनी जगह नहीं छोड़ते, कुछ परमाणु पूरे कर्म को निधत्ति कर्म नहीं कहते। ऐसा कोई कर्म का नाम नहीं है जो निधत्ति और निकाचन वाले, प्रत्येक कर्म में ऐसे परमाणु कुछ है कि अपनी अपनी जगह पर पड़े रहेंगे, उन विशिष्ट नीचे नीचे क्रम से आएंगे, क्रम से नीचे आकर खिर जाना वो तो होगा, नहीं तो वो अनादि से कुछ पड़े रहेंगे ऐसा इस वो बात नहीं है। परंतु जो सामान्य से अपकर्षण होकर जल्दी खिर जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना मोक्ष मार्ग में तो क्या होता है, ये तो अपकर्षण से कितने आते हैं और स्थिति कांडक घात होते रहते हैं, ऊपर की इतनी स्थितियां एकदम एक समय अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में कट होती रहती चली जाती। तो ऐसे कुछ है जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो उसको क्या कहेंगे? वो निकाचना। परंतु जब अपूर्व करण यानी जो आठवें गुणस्थान में आता है तो वो बात नहीं रहेगी। अभी वो सभी परमाणुओं में अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण और उदीर्ण आदि बातें यानी उसके योग्य हो जाते हैं, यानी ये तीन करण रुक जाते हैं। तब तक तो चल रहे थे।
देवायु को ये क्यों नहीं दे सकते? माने देवायु को निकाचित या तो आयु को निकाचित करने में क्या
है? पूरे आयु को क्यों कह रहे? उसका उदय नहीं हुई थी। अच्छा। उसमें से कुछ परमाणु अपना निषेक नहीं छोड़ते है, उसकी बात चल रही है। अंत कोड़ा कोड़ी होगी। अरे ऊपर के परमाणु नहीं होगी वहाँ पर निकाचित वाले? अंत कोड़ा कोड़ी में पड़े हुए, उससे नीचे क्यों नहीं आते? तो वहाँ तक पड़े है वो। ख्याल में
सवाल नहीं समझ में आया।
उनका सवाल ऐसा है कि जब सम्यक तो होता है, अभी ये तो प्रथम उपशम की जब बात आएगी तब उसकी बात और ख्याल में आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जब सम्यक तो होता है तो सत्तर कोड़ा कोड़ी वाले अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाते हैं। तो ये तो नीचे आएगी कि नहीं आएंगे? तो यहाँ कहाँ निकाचितपना है, ऐसा ही पूछ रहे। अपकर्षण तो हो गया उसमें, तो कहते वो वहां नहीं बैठे थे, वो नीचे के इसमें पड़े थे। और इससे नीचे कैसे हो गए? तो उसके जब क्षायिक समय तो होगा तो उसका अर्थ क्या है? वो निकाचन पाना तो निकल गया ना, तभी तो हो जाए। यहाँ जो पड़े हैं वो भी निकल जाएंगे, वो संक्रमित
तो पड़े
रहेंगे। वो उपशम अलग है, वो उपशम वाली बात अलग है, वो उपशम विधान अलग है, और यहाँ जो उपशम कह रहे वो अलग है। वो उपशम अलग बात होती, उसमें बीच वाले कुछ जो है नीचे ऊपर हो जाते हैं और इनको अंतर्मूर्त के लिए अपनी जगह छोड़ने नहीं देते, वहीं रुके रहते हैं। उसको वहाँ वो अंतरकरण और वो उपशम वाला प्रशस्त उपशम कहा। प्रशस्त उपशम बात अलग है, और ये जो उपशम करण बताए वो प्रत्येक कर्म में ऐसा होता है।
तो वहाँ पे उनकी स्थिति लगती होती है, निगत निकाचित करना लगती हो जाता है, क्योंकि वो अंत कोड़ा कोड़ी में आएंगे जाएंगे निगत निकाचित और ऊपर नहीं जाते बंद के समय।
ऐसा कुछ हम रूल कुछ नहीं बताएंगे, ये हम कैसे कहेंगे? सर्वन थोड़ी हम। ख्याल में आती है बात? किसको क्या कहना, बस इतना ही हम बताएंगे, इतना ही हम सुनेंगे भी और इतना ही हम समझेंगे। क्योंकि जिनागम और ये जो कर्म की थीरी इतने अगाध है, तो हम तो अभी अभी कहीं तो थोड़ा थोड़ा समझने लगे। जब जय धैला और जय धोला अभी बने, अभी तो महाबंध में और गहरी बातें आ रही जो हमने वहां पढ़ी भी नहीं थी, ऐसे भी गहरी बातें हैं। तो हम तो कितना अल्प ज्ञानी है, तो ऐसे हमारी तरफ से कोई हम करना नियोग के नियम नहीं कहने चाहिए। हो सकता है हम सोच सकते उसके बारे में, पर बिल्कुल ऐसा डिराय तो बिल्कुल नहीं करना, सोचना भी गलत हो सकता है। देखो इस तरह इन तीन करणों का स्वरूप का, ये तीन करण स्पेशल है लास्ट वाले, यहाँ ऐसा नियम जानना कि उपशांतादि रूप द्रव्य है, वह उपशांतादि रूप ही रहता है। द्रव्य ने वो विशिष्ट परमाणु की बात है, उपशांतादि रूप प्रकृति नहीं कही, निकाचित प्रकृति नहीं कही। समझ में आती बात? किसी कर्म का नाम निकाचित निधति नहीं है, परंतु उसका हवा बना दिया और निधति निकाचित क्या है? वो सहज रूप से वो निधत्तीपना निकाचितपना उपशांतपना निकल जाता है उन परमाणुओं में से विशुद्धि के कारण, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। वो बनता है, वो तो बनता तो हर एक कर्म में तो ऐसे परमाणु पड़े ही हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, बस अपने घर में बैठे हैं अपने निषेक में। और नीचे ऊपर करना रहे ना, वो करने वाले वो अनंत पड़े हैं वहां। बाकी पहले उपशांतादि रूप था, पश्चात उदीर्ण आदि रूप होता है तो कुछ दोष नहीं। क्या कहा? यानी ऐसे कोई उसका नाम ऐसा शिक्का नहीं कि अभी कायम के लिए निरति निकाषित वाले। तो पहले तो उसमें ये तीनों कर्ण होते थे, जब परिणाम विशुद्ध हुए तो ये तीन जो है वो मिट गए उसके। अब बाद में उसकी उदीर्णा होगी, ज्यादा खिर जाएंगे, असंख्यात गुना निर्जरा होगी, वो सब चलेगा उसमें। पहले तो नहीं छोड़ रहे थे अपनी जगह, यानी पहले जितना आकर्षण होता था अभी उसका प्रमाण भी बहुत बढ़ जाएगा। ये आकर्षण भागार वगैरह ना, उसका प्रमाण भी बदलेगा ऊपर के गुण स्थानों में। और जहां जहां विशुद्धि अधिक है, हम द्रव्याणु की अपेक्षा कहेंगे तो शुद्धात्मा में लीन होता है, तो ये तो उसके आकर्षण उदीर्णा आदि बहुत बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार दस कर्णों का स्वरूप पहचानना, ये दस कर्ण जो है कर्मों की दस अवस्थाएं, उसका उन्होंने बहुत अल्प से परिचय दिया है और हमने भी उसकी चर्चा यथायोग्य कर दी है। अब यहाँ ये तो है ग्रंथ लब्धिसार, तो कहते यहाँ दर्शन चारित्र लब्धि द्वारा मोक्ष का साधन करते हैं। लब्धिसार तो लब्धि क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति होना ही हमारी लब्धि है, वही करने योग्य कार्य है। तो वो कैसे होता है, तो कहते दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि के द्वारा। दर्शन लब्धि यानी समय दर्शन की प्राप्ति, और चारित्र लब्धि यानी चारित्र की प्राप्ति, यानी जो हम कहेंगे ना देश चारित्र है, सकल चारित्र है, उसकी प्राप्ति होना, उसको यहाँ लब्धि कहा। और वही मोक्ष का साधन है, यानी दर्शन और चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का वो साधन है। मोक्ष की प्राप्ति संवर निर्जरा से होती है। क्या कहा, ये तो वेल नोन है ना बात, हमें ये तो नई बात तो ही नहीं। संवर निर्जरा है, वे बंद सत्व की हानि से होते हैं। अब इसका अर्थ बताओ अश्विन भाई, बोलेंगे आप? हाँ, संवर निर्जरा है, अभी दो जोड़ी ली ना, अब हम ऐसा पढ़ेंगे, संवर है वह बंद की हानि से होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रकृतियों का बंद ही रुक गया तो हम कहेंगे वह संवर हुआ। तो संवर है वह बंद की हानि से होता है। अब बंद तो रुक गया, अभी क्या करे, कैसे होगा मोक्ष, तो निर्जरा है वो सत्व की हानि से होता है। सत्व ने ऑलरेडी पुराना बंदा हुआ, सत्ता में पड़ा है, वो सत्ता में पड़ा है तो एक एक समय प्रबद्ध हो तो कितना समय लगेगा, तो कहते वो सत्व की भी अधिक हानि होती है। रेगुलरली क्या होता था, जितना बंद है राउंड अबाउट उतना ही वो तो फिरता था, जिसको हम सामान्य से निर्जरा या उदय भी कहते हैं, परंतु वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं थी। तभी क्या, बंद नहीं, नया बंद रुकता चला जाएगा और ऑलरेडी जो स्टॉक में वो अधिक मात्रा में खिरेगा, ये रुकते रुकते सभी रुक जाए और फिर वो सब खिर गया तो ही मोक्ष हो जाएगा। यही कहते हैं कि संवर और निर्जरा है वे बंद सत्व की हानि से होते, सत्व ने सत्ता। इसलिए दर्शन चारित्र लब्धि में बंद सत्व की हानि कैसे होती है, उसका सामान्य स्वरूप यहाँ कहते हैं। क्योंकि हमें तो समय दर्शन, उससे क्या होगा, क्या होगा, तो कर्मों में क्या क्या बातें होती है, हानि कैसे होती है, क्या क्या होती है और किस पद्धति से निर्जरा बढ़ती है, वो सारा स्वरूप यहाँ बिल्कुल सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार यहाँ सब कथन होगा। तो उसका सामान्य स्वरूप यहाँ कहते हैं, विशेष आगे कहेंगे क्योंकि पूरा ग्रंथ ही आने वाला है विशेष के ऊपर। फिर भी भूमिका में पूर्ण आगे जो कुछ आने वाला है विषय, भूमिका में उसको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ चार प्रकार के बंद मिटने का क्रम कहते हैं। ये चार प्रकार के बंद कौन से हैं नितिन भाई, आपको याद नहीं होगा तो नलिन भाई बैठे वहां, बोलो। चार प्रकार, बहुत अच्छा, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। यहाँ क्या कहा, चार प्रकार के बंद मिटने का क्रम कहते हैं। तो ये कल ही देखना पड़ेगा अभी इसका क्रम, यानी जब दर्शन और चारित्र की लब्धि से क्या होगा, बंद की हानि होगी। तो ये बंद की हानि किसमें होगी, क्या प्रकृति बंद की हानि होगी, क्या प्रदेश बंद की होगी, क्या स्थिति बंद की होगी, क्या अनुभाग बंद की होगी, क्या होगा और कैसे होगी वो कल अभी देखना पड़ेगा। हा? बहुत आपको उत्सुकता है तो जाके रात में निकाल के पढ़ना। हाँ जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ।